ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। हरे कृष्ण। तो श्रीमद्भागवतम क्लास में आप सबका स्वागत है। हम सब लोग पिछले कुछ समय से स्कंद 6 अध्याय 8 प्रश्न संख्या आज 18 पे ही चर्चा करेंगे। बोल विश्लोक लिखा, हमारे पीछे बोलने का प्रयास करिए। धन्वंतरी वैद्यराज धन्वंतरी भगवान श्री भगवान पातु मेरी रक्षा करें। अपथ्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं यथा मांस तथा मादक द्रव्यों से द्वंद्वात द्विधा से भयात भय से ऋषभ श्री ऋषभदेव निर्जिता आत्मा मन तथा स्वयं को वश में रखने वाला यज्ञः यज्ञ च तथा लोकात् जनता के अपयश से अवतार रक्षा करें। जन अनंतार अन्य व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न भयानक परिस्थितियों से बलः भगवान बलराम गणात् गणों से क्रोधवशात क्रुद्ध सर्पों से अहिंद्रा शेष नाग के रूप में भगवान बलराम। तो इस श्लोक पर हम पढ़ेंगे, हमारे साथ बोलने का प्रयास कीजिए। धन्वंतरि भगवान पात पथाया द्वंद्वात् भयाद् ऋषभो निर्जित आत्मा यज्ञश्च लोका दवातान् जनान्दाद् बलो गणात् क्रोधवशाद् अहिंद्रा धन्वंतरि भगवान् पात्व पथाया द्वंद्वात् भया ऋषभो निजिर्त आत्मा यज्ञश्च लोका दवातान् जनान्ता बलो गणात् क्रोधवशाद् अहिंद्रः धन्वंतरि भगवान् पात पथयादा दद्वान्दात् भया ऋषभो निजिर्त आत्मा यद्यश्च लोकाद् वनान्तरादा बलो गणात् क्रोधवशाद् अहिंद्र। धन्वंतरि भगवान् माताएं हरे कृष्णा। अनुवाद इस प्रकार है, श्री भगवान अपने धन्वंतरी अवतार के रूप में मुझे अवांछित खाद्य पदार्थों से दूर रखें और शारीरिक रुणता से मेरी रक्षा करें, अपनी अंतः तथा बाह्य इंद्रियों को वश में करने वाले श्री ऋषभदेव सर्दी तथा गर्मी के द्वैत से उत्पन्न भय से मेरी रक्षा करें, श्री यज्ञ जनता से मिलने वाले अपयश तथा हानि से मेरी रक्षा करें, और शेष रूप में भगवान बलराम मुझे ईर्ष्यालु सर्पों से बचाएं। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में रहने के लिए मनुष्यों को अनेक आपत्तियों का सामना करना पड़ता है, जिनका उल्लेख इस श्लोक में हुआ है। उदाहरणार्थ, अवांछित भोजन कृपत है से स्वास्थ्य को भय रहता है, अतः ऐसे भोजन का त्याग कर देना चाहिए। इस मामले में धन्वंतरी हमारी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु समस्त जीवात्मा के परमात्मा हैं, अतः वे चाहे तो हमें अन्य जीवों के उपद्रवों अर्थात आदि भौतिक उपद्रवों से बचा सकते हैं। भगवान बलराम शेष के अवतार हैं, अतः वे चाहे तो हमें क्रुद्ध सर्पों अर्थात द्वेषपूर्ण व्यक्तियों से के आक्रमण से बचा सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशा श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सहजन विशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे
हरे कृष्णा। तो इस अध्याय का नाम है नारायण कवच, जो कि एक विश्वरूप जो है कि जो पिछली कथा से हम सुन रहे हैं समझ रहे हैं कि देवता लोग जो है ब्रह्मा जी के कहने के बाद उन्होंने विश्वरूप जी का संरक्षण प्राप्त किया और उसके बाद असुरों से जो देवताओं का युद्ध चल रहा था उसको दोबारा से शक्ति प्राप्त कर देवताओं को हराया भी। तो लास्ट टाइम भी हमने चर्चा की थी कि देवताओं और असुरों में सदैव हमेशा से ही जो है मित्रता रही है, नहीं हमेशा से दुश्मनी रही है। और ये लोग देवता और असुरों में असुर और देवताओं में देवता लोग जो कि भगवान के नियमों का पालन करते हुए जीते हैं, भगवान के द्वारा दी गई उपाधि के अनुसार कार्य करने का प्रयास करते हैं और ये सब कार्य करते हुए उनको बहुत से लाभ भी मिलते हैं। जैसे जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं तो उनको काफी चीजें सहूलियतें प्रदान होती हैं, जैसे जो आर्मी में है तो उनको बड़ा सस्ता सामान मिल जाता है, उनके बच्चों के लिए स्कूल अलग से होता है, और जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी नाना प्रकार की सरकार सुविधाएं, मकान देना, ये सब चीजें करता करती है क्योंकि वो भगवान की अर्थात गवर्नमेंट की सेवा कर रहे हैं। उसी प्रकार जो देवता लोग भी हैं ये लोग भी क्योंकि भगवान के नियमों का पालन करते हैं, इस सृष्टि को चलाए रखने में उनकी मदद करते हैं, अपने कार्यों को जो उनको उपाधि दी गई है उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो उसके साथ उनको भी बड़ा कुछ मिलता है। सुंदर उनका रूप होता है। आपने देखा नहीं होगा कि देवताओं में कभी बड़ा कोई कुरूप व्यक्ति कभी कि जिसका मतलब शरीर ठीक नहीं है, अपंग है या अजीब वगैरह, कुछ देवता मिल सकते हैं किसी श्राप इत्यादि के अनुसार, लेकिन ज्यादातर ये बड़े सुंदर होते हैं देवता लोग। और असुरों की दृष्टि अगर देखें तो असुरों में सदैव आप देखेंगे ये लोग असुर जो होते हैं ये हमेशा द्वेष से भरे हुए होते हैं। और जिस प्रकार देवता लोग शांत और उस तरह रहना चाहते हैं, लेकिन असुरों की वृत्ति एकदम उल्टी होती है। इनको जब तक कुछ लड़ाई झगड़े ना हो, गाली गलौच ना हो, तलवारें ना निकल जाएं, तब तक इनको जीने का आनंद नहीं आता। तो वृत्ति एकदम अलग अलग है और इस प्रकार की वृत्ति हम समाज में भी देख सकते हैं, कई देश भी देख सकते हैं, कई कॉलोनीज भी देख सकते हैं और घर परिवारों में भी लोगों की वृत्ति देख सकते हैं, आसुरी वृत्ति। भगवद्गीता के 16वें अध्याय में बड़े सुंदर ढंग से बताई गई, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमें सबको लगेगा अरे ये गुण तो हमारे अंदर भी हैं। उसमें देवताओं के गुण भी बताए हैं लेकिन पहले 3 श्लोकों में बताएंगे, उसके बाद असुरों के गुण। और जब हम उन आसुरी गुणों को पढ़ते हैं तो डाइजेस्ट नहीं होते क्योंकि उस प्रकार की मेंटालिटी, उस प्रकार की चेतना ज्यादातर पृथ्वी पर रहने वाले दो पैर वाले मनुष्यों में भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। वो बात अलग है कि इससे पिछले युगों में असुरों की उनका रूप, उनके शरीर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग हुआ करता था। जैसे हम लोग कई बार ड्रामाज में भी किसी को वो बनाना हो, अगर असुर बनाना हो, या फिल्मों में और आपने अगर दूसरे सीरियल्स में भी देखा होगा तो असुरों का रूप रेखा बड़ी अजीबो गरीब होती है ना, देखा आप लोग कैसे होते हैं, मूछे, बड़ी बड़ी मूछे होती हैं और काला और डरावना व्यक्ति होता है, यस, और हाँ उनकी शक्ल देखते डर लगने लग जाता है लोगों को, और हाँ और ये भ्रुकुटी है उनकी बड़ी खतरनाक तनी हुई होती है बिल्कुल, और जोर जोर से हंसते हैं, आप तो बड़े प्यार से हंस रहे हो और आवाज बड़ी कर्कश होती है, हाँ कोमल नहीं होती आवाज उनकी, ठीक है। और अब जो ये बता रहे हो लेकिन अब आस पास में मत देखिए, उनके दांत भी होते हैं, दांत होते हैं दो अलग से दांत भी होते हैं ऐसे करके, सिंह भी होते हैं है ना, सिंह भी देखे जाते हैं। तो कहने का मतलब जो असुर लोग हुआ करते थे पहले, इनके शरीर का आकार भी बहुत बड़ा हुआ करता था और कुछ ना कुछ शक्तियां इनके पास होती थी, जब बोलो कुछ बोलो छ करके हाथ में आ जाता था और किसी को भी मार देते थे। और खासकर ये देवताओं के बहुत अगेंस्ट होते थे, जहां कहीं भी देवता लोग कुछ यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए करते थे वहां जाके आके मूत्र और मल का त्याग कर देते थे, उनका सारा का सारा साधन संभाल सब अपवित्र कर देते थे। अभी नहीं करते ऐसा अगर कोई यज्ञ कर रहा हो, क्योंकि उनको मालूम है यज्ञ तो इस युग में होता ही नहीं है, और जो व्यक्ति मंत्र भी पढ़ रहा है उसको मालूम है तो गलत पढ़ रहा है मंत्रोच्चारण बहुत शुद्ध नहीं होता उसका, तो उसको कहता है इसको तो डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, तो पहले गलत बोल रहा है सामग्री शुद्ध वैसे नहीं मिलती उनको, तो देखते हैं कहीं पर जब उस युग में सामग्री बहुत इतने शुद्ध नहीं मिलती थी, इस कलयुग में कहां से मिलेगी, तो इसलिए अब आके डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन इस समय असुरों का रूप बदल चुका है, अब ये असुर भी जो है दूसरे ढंग से रहते हैं, जैसे एक बार पहले भी चर्चा की थी। अब ये हमारी ही तरह लगने वाले होते हैं ज्यादातर, आसुरी वृत्ति इनकी होती है, ईर्ष्या द्वेष भरे हुए होते हैं, कुछ कह सकते थोड़े पॉलिश्ड होते हैं, लेकिन 16वें अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इस तरह के लोग तो हर जगह मिलते हैं, इवन हमारे अंदर भी इस प्रकार के कुछ अवगुण पाए जाते हैं। तो इसलिए समाज में जो कलयुग समाज चल रहा है हमारा, तो इसमें देवी गुण वाले व्यक्ति और आसुरी व्यक्ति वाले में हमेशा झगड़ा बना रहता है, और इस झगड़े का जो मूल कारण होता है वो क्या होता है, अपनी पहचान को भूलकर व्यक्ति इस प्रकृति पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है हर उस चीज पर। तो देवता लोग भी हमेशा इसीलिए संकट में रहते हैं क्योंकि असुर लोग उन्हें जीने नहीं देते, आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति उनके ऊपर अटैक करता रहता है, और देवता लोग के पास भी शक्ति होती है, लेकिन कई बार असुर लोग बहुत क्या हो जाते हैं, शक्तिशाली बन जाते हैं उन्हीं साधनों को करने से। तो इस प्रकार देवताओं और असुरों से झगड़ा रहता। तो यहां पर भी जो है इस अध्याय में भी देवताओं के ऊपर अटैक किया गया असुरों के, और जब उनको हार का सामना करना पड़ा तो भागे वो किस तरफ, ब्रह्मा जी के पास। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोगों ने, क्योंकि इंद्र को कहा कि तुमने क्योंकि अपने गुरु का अपमान किया था तो ये इसका कारण है, तो अभी आप जाओ विश्वरूप जी के पास, उनसे सहायता मांगो। और विश्वरूप जी उन्हें नारायण कवच नाम का मंत्र देते हैं और पूरी विधि बताते हैं कैसे करना है, कैसे आचमन करना है, किस प्रकार से मंत्र का उच्चारण करना है, ओम नमो नारायण है ना, उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उसके बाद इन सब मंत्रों को जो कि इस में बताया जा रहा है नारायण कवच में, कि किस किस प्रकार से भगवान के जितने भी अवतार हैं उन सब अवतारों के नाम की इसमें चर्चा मिल रही है, और हर अवतार से एक विशेष उनका जो गुण था या जिसके लिए वो आए थे, एक विशेष अपने अनर्थ की उससे क्या मांग रहे हैं, सुरक्षा मांगी जा रही है, और अपनी सुरक्षा के लिए ये मंत्र आज, जैसे आज के मंत्र में भी है, श्री भगवान धन्वंतरी अवतार के रूप में मुझे अवांछित खाद्य पदार्थों से मेरी रक्षा करें। अवांछित खाद्य पदार्थ का मतलब क्या होता है, वो फूड जो कि खाने लायक नहीं है, जैसे आजकल तो सारा का सारा फूड ज्यादातर इस तरह का इंजेक्टेड और उन सब चीजों के मिश्रित से बन रहा है जिसको खाने से हमारी स्थिति खराब हो जाती है, तो ज्यादातर वो फूड मिल रहा है। तो यहां पर उनसे मांगा जा रहा है कि हमें इस प्रकार के भोजन से भी हमें बचाएं, हमारी रक्षा करें। और भगवान ऋषभदेव की कथा हमने पढ़ी थी, उसमें भी उनको बता रहे कि सर्दी और गर्मी के प्रभावों से होने वाले भय से भी हमारी रक्षा हो। श्री यज्ञ भगवान का एक अवतार, जनता से मिलने वाले अपयश तथा हानि से मेरी रक्षा करें। जो जनता से भी अपयश मिलता है कई बार, किसी की ख्याति में बहुत बड़ा मतलब कुछ छोटा सा दाग लग गया तो पूरी की पूरी जनता व्यक्ति के अगेंस्ट हो जाती है, तो इस प्रकार के अपयश से भी रक्षा करने की मांग कर रहे हैं। और भगवान बलराम जो कि शेष रूप में इनसे बात करी जा रही है कि हमें ईर्ष्यालु सर्पों से बचाएं। इसके पहले भी कई सुंदर सुंदर प्रार्थनाओं में जो इस नारायण कवच में बताया, सनत कुमार काम वासनाओं से मेरी रक्षा करें, इससे पिछले श्लोक में था, जैसे ही मैं कोई शुभ कार्य शुरू करूं श्री हयग्रीव मेरी रक्षा करें, जिससे मैं परमेश्वर को नमस्कार करने का अपराधी ना बनूं। श्री विग्रह की अर्चना में कोई अपराध ना हो इसके लिए देवऋषि नारद मेरी रक्षा करें। भगवान कूर्म असीम नरक लोकों में गिरने से मुझे बचाएं। तो इस प्रकार भगवान के विभिन्न अवतारों से रक्षा की मांग की जा रही है। और हम देखते हैं कि भगवान के इन सुंदर नामों में जितने भी अवतार हुए, इन सब अवतारों का कुछ न कुछ मुख्य प्रयोजन हुआ करता है। और वो सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए या किसी धर्म की स्थापना करने के लिए आया करते थे। लेकिन विशेषकर हम देखते हैं इतिहास में भी कि जब भक्ति भगवान के नामों का उच्चारण करता है, एक नारायण कवच में जो इतने मंत्र बताए गए हैं इन सबको जपना, प्लस वैसे भी अगर वह भगवान के नामों का जप करता है तो उसकी सुरक्षा वैसे ही हो जाती है। अजामिल जैसा व्यक्ति जो पूरा जीवन पाप करता रहा, उसने केवल मरते समय भगवान को इंगित करते हुए नहीं, अपने पुत्र को इंगित करते हुए उस चेतना से ही नारायण नाम पुकारा था। लेकिन ये नारायण शब्द क्योंकि भगवान का है और पूर्ण जिसे कह सकते हैं शुभ है, तो तुरंत अजामिल की रक्षा हुई, चाहे उसने जीवन भर कितने ही पाप क्यों न किए हों। और तुरंत वहां पर विष्णु दूतों ने आकर उसकी रक्षा करी। दूसरा, इसी तरह जब जब भगवान का नाम पुकारा गया, गजेंद्र अवस्था में, जब गजेंद्र एक हाथी के रूप में थे, गजेंद्र हाथी ही थे, और एक मगरमच्छ से उनसे काफी वर्षों से झगड़ा चल रहा था, और पानी में उसको घसीट लिया और वहां पर जो है मगरमच्छ की शक्ति भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन बाद में उन्होंने भगवान से प्रार्थनाएं करी और तुरंत भगवान वहां पहुंचे। और बताते हैं कि भगवान जब गरुड़ के ऊपर बैठकर आ रहे थे तो उन्हें गरुड़ का उड़ना भी, जो कि मन की गति से भी तेज चलता है, उनको लगा कि गरुड़ भी बहुत धीरे चल रहे हैं, लेकिन मेरे भक्त की पुकार जो कि मुझे पुकार रहे हैं इस समय, मुझे उनकी रक्षा तुरंत करनी चाहिए। तो गरुड़ से कूद कर भगवान ने उनकी रक्षा करी और वापसी में गरुड़ वापस, जब भगवान की रक्षा करके वापस आ रहे थे तो गरुड़ जी मिले। बताते हैं तो गरुड़ जी को कह रहे कहां से, कहते भाई मैं तो काम करके आ गया, लेट्स गो बैक, फिर वापिस चलते हैं। तो भगवान बहुत उतावले रहते हैं। इससे पहले भी हम देखते हैं इतिहास में जब भगवान या भगवान के नाम अधिक भगवान से बड़े हो जाते हैं। जब पुल बनाना था, ब्रिज, तो हनुमान ने भगवान का नाम ही लिखा था, खाली नाम में इतनी शक्ति है कि नाम ने उस पत्थर को तैरने को विवश कर दिया और इस प्रकार पूरा का पूरा इतना बड़ा ब्रिज बन गया। आज भी हम सैटेलाइट की पिक्चर्स देखते हैं तो वो ब्रिज आज नीचे है, समुद्र के अंदर दिखाई देता है। तो जब तक भगवान के नाम हो, और भगवान ने भी उतावले होकर हमेशा भक्तों की रक्षा करी, इस तरह के कई केसेस हैं। द्रौपदी के भी केस में जब पूरी भरी सभा में उसको लज्जित किया जा रहा था, निवस्त्र करने की कोशिश की जा रही थी, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान के नामों का उच्चारण किया और फिर भगवान ने तुरंत वहां रक्षा करी। कई बार हम देखते हैं कि हम लोग भी कष्टों में आने पर भगवान का नाम पुकारते हैं, लेकिन हमारे द्वारा पुकारे जाने वाले नाम उस प्रकार से पूर्णतः भगवान पर विश्वास रखते हुए नहीं होते, हमारे फेथ में कमी होती है, हमारे विश्वास में कमी होती है, एक डाउट रहता है हमेशा कि पता नहीं पूरा होगा या नहीं। तो उस कारण से, उस शेकिंग फेथ के कारण शायद हमारी रक्षा भी नहीं होती इसलिए। लेकिन जब जब भगवान के भक्तों ने भगवान का नाम पुकारा है, पूरे फेथ से पुकारा है, तो रक्षा भी हुई। उत्तरा के गर्भ में जब परीक्षित महाराज थे और जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, अश्वत्थामा के साथ प्रॉब्लम यह थी कि उसको ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता था, उसको वापस लेना नहीं आता था, लेकिन उसने चाहा कि ये जो अंतिम पांडवों के कुल का एक वंशज बचा है इसको भी समाप्त कर देते हैं। और माता के गर्भ के अंदर, क्योंकि ब्रह्मास्त्र में ऐसी क्वालिटी है कि आप मंत्र पढ़कर किसी एक को मारना चाहे तो एक ही मरेगा, दस को मारना चाहे तो दस ही मरेंगे, और पूरे सबको मारना चाहो, ब्रह्मांड को खत्म करना चाहो, ब्रह्मांड भी खत्म हो सकता है, इस प्रकार की अग्नि वो बरसाता है। तो जब उससे पहले जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए, जब कृष्ण गए और अर्जुन जब भागे, तो भी जब उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था तो अर्जुन ने अभी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा, क्योंकि अर्जुन को दोनों विद्या आती थी, छोड़ने की विद्या भी आती थी और उसको कंट्रोल करने की भी आती थी। तो उस ब्रह्मास्त्र के साथ दूसरा ब्रह्मास्त्र मिला और जैसे मिला तो अर्जुन ने उसको फिर से बंद कर लिया। लेकिन जब उत्तरा के गर्भ में उस शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उत्तरा उस भरी सभा में उस समय सारे पांडव भी वहां उपस्थित थे, लेकिन वो किसी के पास नहीं गई। उन्हें पता था कि इस समय मेरी कौन रक्षा कर सकते हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने प्रार्थना करी और फिर भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में अवतरित होकर उस शिशु की रक्षा करी, उसको दूसरा शरीर दिया, क्योंकि वो जो शिशु का शरीर था कहते हैं अंदर जल गया था ब्रह्मास्त्र की वजह से, लेकिन तुरंत उसकी जो है रक्षा करी और उस ब्रह्मास्त्र को भी कंट्रोल किया। तो बताया जाता है कि जब जब भक्तों ने भगवान को पुकारा है एकनिष्ठ भक्तों ने हृदय से, तो भगवान ने सदैव रक्षा करी है। जिस प्रकार हम लोग आत्मा की क्वालिटी को जानने का प्रयास करते हैं कि आत्मा सच्चिदानंद है, उसकी जो नेचर है सेवा करना है, आत्मा का स्वभाव सेवा करना है, तो इस बात को समझने के प्रयास में हम बात कई बार एग्जांपल देते हैं प्रभुपाद जी कि जिस प्रकार पानी का स्वभाव है तरलता या ढलान की तरफ लुढ़कना, अग्नि का है प्रकाश देना और जलाना, चीनी का मिठास देना, ये इनकी वृत्ति है, आप इन चीजों को इससे अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार आत्मा की भी क्या है, सेवा करना। उसी तरह भगवान की भी ये वृत्ति है कि जब जब उन्हें पुकारा जाए उनके एकनिष्ठ भक्तों के द्वारा, तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान को आना ही पड़ता है। ये भगवान का धर्म है, भगवान का नियत कर्म है, भगवान की ड्यूटी है, कर्तव्य है, ये उनका कर्तव्य बन जाता है। इसलिए हमारे पूरे के पूरे ग्रंथ भगवान की इस प्रकार की वृत्ति, इस प्रकार के कर्तव्य से भरा हुआ है। भगवान किसी कर्म से बंधे नहीं हुए, वो तो उदासीन, इस संसार के प्रति उदासीन रहते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं किसी भी चीज से, लेकिन फिर भी भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा, अपने विस्तार परमात्मा के रूप में द्वारा हर व्यक्ति के हृदय को जानते हैं और जानते हैं कि किसको कब क्या चाहिए। इसलिए भगवान उस व्यक्ति के लिए वो सब चीजें मुहैया कराते हैं। हमारे को लग सकता है कि भगवान ने मेरी ये इच्छा पूरी नहीं कही और वो इच्छा पूरी नहीं कही, लेकिन भगवान सदैव अपने भक्तों को उनकी रक्षा करने के लिए या उनकी चेतना को और शुद्ध करने के लिए या उनकी परीक्षा लेना, परीक्षा मतलब क्यों परीक्षा लेते हैं भगवान, हमारा फेथ चेक करने के लिए, ये चेक करने के लिए ताकि ये भक्त जो है इस प्रकार की उथल पुथल जो सामाजिक या शारीरिक या मानसिक उथल पुथल जो उसके जीवन में आती है, इस प्रकार की उथल पुथल को सहता हुआ ये समझ जाए कि ये संसार दुखों का घर है। किसी तरह इस भक्त के अंदर उसे ये मालूम पड़ जाए कि ये जगत जीने के लिए नहीं है, ये संसार मनुष्य के लिए, मतलब एक बुद्धिमान मनुष्य के रहने के लिए नहीं। हमें तो लगता है ना, हम लोग तो जब कभी भगवान की शरण में आते भी हैं तो भौतिक इच्छाओं को लेकर आते हैं, या जो कष्ट हमें इस समय तंग कर रहे हैं उन कष्टों के लिए आते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों की सुरक्षा करने के लिए, उनकी भक्ति की सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि भगवान कहते हैं ना योगक्षेम व्याहम, मैं अपने भक्तों की, उनके पास जो है उसकी रक्षा करता हूं और जो उनके पास नहीं है मैं उन्हें देता हूं। जो हमारे पास है, क्या है हमारे पास, मटेरियल ऑपुलेंस की बात नहीं हो रही है, कितने कितने जन्मों में कहां कहां क्या पुण्य कर्म करके या क्या नाम लिए हैं, उस भक्ति को भगवान कहते हैं जो उसके पास है उसे मैं रक्षा करता हूं, उसकी जो चेतना है उसकी मैं रक्षा करता हूं, और जो उसके पास नहीं है, क्या नहीं है हमारे पास, हमारे पास अभी शुद्ध हृदय नहीं है, हमारे पास भगवत प्रेम नहीं, तो वो मैं उसकी उसको देता हूं। तो इन सब चीजों को देने के लिए भगवान समय काल परिस्थिति का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। दूसरी बात, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भगवान भावग्राही जनार्दन है, भगवान हम जैसे भक्तों का भाव देखते हैं कि क्या इसकी इंटेंशन है। इसलिए भक्ति को भगवान इंटेंशंस के रूप में ही देखते हैं कि क्या इसका भाव है, उसी रूप में लेते हैं। लेकिन अगर हमारे इस भाव में भौतिक मलिनता है, हमारे विचारों की, हमारी इच्छाओं की, तो हम कभी भी अपने इस जीवन में क्या कई और जीवनों में भी हमें काफी प्रयास करने के बाद भी कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा या इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए व्यक्ति हर समय से प्रयास करना चाहिए केवल भक्ति में आगे बढ़ने का। इस जगत में जिस प्रकार के जीवन में हम रहते हैं, उस जीवन में हम लोग समाज की प्रथाओं से बहुत ज्यादा बंधे हुए होते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा मटेरियल स्टेटस को देखकर चलते हैं। ऐसा नहीं किया तो वो क्या कहेंगे, वो नहीं दिया तो ये क्या होगा, उन्होंने हमें ये दिया तो हम ये कैसे दें। तो जो सामाजिक बंधन है या फॉर्मेलिटीज हैं, बहुत अधिक ज्यादा उसके विषय में सोचते हैं, जबकि हम लोग समाज में रहते हैं और इनकी जरूरत पड़ती है इन सब चीजों को करने की। लेकिन कई बार हम लोग इन विषयों पर इतना ज्यादा सोचते हैं या इनको इतना पूरा करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग एक सामाजिक जंतु बन के रह जाते हैं। इस पूरे समाज का बनना अर्थात इस समाज की रचना केवल इसलिए की गई है, वर्णाश्रम धर्म की रचना इसलिए की गई है ताकि हम अपने सोकल्ड कर्तव्य को पूरा करते हुए कृष्ण के प्रति प्रेम को डेवलप कर सकें, इस भौतिक जगत के प्रति पूरी तरह वैराग्य उत्पन्न कर सकें। अगर हमारे कामों के द्वारा, हमारी क्रियाओं के द्वारा, हमारी मानसिकता के द्वारा या हमारे आसपास के एनवायरमेंट के द्वारा हमारा भाव या हमारा मन इस जगत में सुख महसूस कर रहा है या यहां पर हमारी और इच्छाएं बढ़ रही हैं या हमारा प्रेम इस जगत से ज्यादा हो रहा है या यहां के लोगों से ज्यादा हो रहा है, तो यह हमारे लिए एडवांसमेंट का साइन नहीं है। ये तो हमें फिर से यहां पर बांध देगा। और इस प्रकार की चेतना के द्वारा जब दोबारा पुनः शरीर प्राप्त होगा तो फिर से एक और परिवार, और उन परिवारों के फिर कष्ट, फिर समस्याएं, फिर प्रार्थनाएं, फिर दिक्कत, फिर जब इच्छाएं पूरी हो जाना और उन इच्छाओं को फिर से एंजॉय करना और इच्छाओं को एंजॉय करते हुए फिर से चेतना दूषित करना और फिर दूषित चेतना के साथ जब मरना तो फिर एक शरीर ले लेना। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस में हमें प्रयास ही करना चाहिए क्योंकि जन्म सबके पास बहुत कम ही है, लिमिटेड टाइम है सब लोगों के पास। जिस प्रकार एक क्लासरूम में, किसी भी क्लास में किसी भी भक्त को, सॉरी भक्त कह रहा हूं, स्टूडेंट को एक टीचर पढ़ाता है और उसके पास वही सिलेबस है जो सबने पढ़ना है, 365 दिन है उसके पास परीक्षा की तैयारी करने के लिए। लेकिन उस तैयारी में, उसी क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो अच्छी डिवीजन लाते हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, उसी में कोई अच्छे मार्क्स भी लाते हैं, कुछ एवरेज मार्क्स भी लाते हैं ना, कुछ को फेल भी होना पड़ता। तो यहां पर हम, ये पूरा संसार ये इस तरह ताना बुना बुना है कि ये भी एक परीक्षा ही है, और इस परीक्षा में जो इसका फाइनल एग्जाम है वो है मृत्यु। मृत्यु के समय हमारी क्या चेतना है ये डिपेंड करता है हमारे पूरे जीवन के द्वारा किए गए कार्यों पर। समय सबके पास बराबर है, हो सकता है कहीं को कम हो, कहीं को ज्यादा हो, लेकिन जितना भी समय है उन सबके लिए भगवत गीता अवेलेबल है मार्केट में, श्रीमद् भागवतम अवेलेबल है, सब लोगों को सारी सुविधाएं बराबर दी गई अपने पूर्व जन्म के आधार पर, कर्मों के आधार पर। लेकिन उसका हम लोग उस अपॉर्चुनिटी को कितना कैसे अवेल करें यह हमारे पर डिपेंड करता है। सारे साधन होते हुए भी अगर हम लोग अपने साध्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे या वो उद्देश्य नहीं बनाया, हम लोग छोटी छोटी चीजों में अटक जाते हैं कई बार कि ये प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो उसके बाद मैं ऐसा भक्ति शुरू करूंगा, या ये जो समस्या चल रही है ये समस्या खत्म हो जाए, या जब इतना पैसा आ जाएगा तो उसके बाद तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, या ये जो समस्या है इस समय मेरे शरीर में इसकी वजह से मैं सब कुछ ठीक नहीं कर पा रहा। तो इस प्रकार के जो बंधनों से बस जाते हैं, बंध जाते हैं और उन्हीं को ठीक करने में लग जाते हैं, तो हमारा चेतना, हमारा फोकस उसी तरफ चला जाता है। और जो हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है उससे हम लोग डिवीट हो जाते हैं। इसलिए साधु संघ, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता इत्यादि, ये केवल इसीलिए है कि जब हम लोग उस ट्रैक पर चलें तो उस ट्रैक पर जो भी लेफ्ट टर्न और राइट टर्न आए, जो भी मटेरियल भौतिक जो है क्या कहते हैं से बाधाएं आए, तो उन बाधाओं से रुकना नहीं। हमेशा मालूम रहना चाहिए कि मेरे को मेरा आखिरी गंतव्य क्या है। और भक्तों का संग और श्रीमद् भागवतम इत्यादि मुझे केवल यही रिमाइंड कराता है कि मैं ठीक चल रहा हूं या नहीं, मेरा कहीं उद्देश्य तो नहीं बदल गया। अब जिन्हें पता ही नहीं कि उद्देश्य क्या है या क्या करना है, उनके लिए तो ठीक है, वो तो चल रहे हैं जहां मर्जी जाए। लेकिन जिन लोगों को मालूम पड़ गया है कि 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि को ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, इतनी सारी योनियों में केवल विकसित चेतना मनुष्य योनि में ही प्राप्त हुई है, इतने सारे देशों में केवल भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां पर बहुत आसानी से व्यक्ति अनुकूल परिस्थिति में भक्ति कर सकता है, जिसे पता है कि पिछले युगों में और इस युग में अंतर यह है कि पिछले युगों में उम्र ज्यादा होती थी लेकिन साधन कठिन थे, इस युग में उम्र कम है लेकिन साधन बहुत आसान है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जिसे मालूम पड़ गया है, जिसे पता है कि जीवन का उद्देश्य इस भौतिक जगत में केवल भोगों को करना नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति कितना भोग कर सकता है जीवन, नहीं कर सकता। और भोग का मतलब भी क्या है, जितना बड़ा शरीर जितना बड़ा पेट उसको मिला है उतना भी दूसरे को भी मिला है, ये सारा भोग और ये सारी चीजें केवल यहां पर होती हैं, हमारे दिमाग में हमारे मन में, केवल हमारा मन फील करता है कि हां मैंने कुछ भोग किया या मैं कुछ भोग करूंगा या मेरी जो इतनी इच्छाएं हैं मैं इसको पूरा कर लूंगा या आज मेरे पास इतना है, जितना भी है उसके सामने नहीं है लेकिन वो सारा बैंक्स में पड़ा है, तो ना तो व्यक्ति ढंग से भोग कर सकता है। और अगर भोग करता भी है तो भोग करते करते उसकी भोग में और आसक्ति हो जाती है और उसका पूरा का जो पूरा जो मन है, जिस प्रकार रूपा जी कहते हैं हमारी चेतना या हमारा मन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी की तरह है, बिल्कुल साफ पानी की तरह। अब इस साफ पानी में हम जोन सा भी रंग मिलाएं तो वो पानी उस रंग का हो जाएगा, अधिक रंग मिलाएं तो और गाढ़ा हो जाएगा, बहुत अधिक रंग मिलाएं तो और गाढ़ा हो जाएगा। उसी प्रकार जब हम लोग अपनी साफ चेतना में जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो नाना प्रकार की इच्छाएं और भोग हमारी उस चेतना पर बहुत गाढ़े इंप्रेशन डाल देती है, और फिर इस प्रकार के ज्ञान को या भक्तों के संग के द्वारा मिलने वाले इस ज्ञान से भी हमारी वो चेतना कई बार शुद्ध नहीं हो पाती या स्टील फ्रेम्ड ब्रेन हो जाता है। स्टील फ्रेम्ड का मतलब कि इस प्रकार मतलब कुछ घुस नहीं सकता उसके अंदर, इनसेंसिटिव हो जाता है दिमाग मन कि सही ज्ञान को भी वो एंटर नहीं कर पाता, नो वैकेंसी, अंदर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है यही करना है, इसीलिए जीवन मिला है, यही खाना है मुझे, मुझे और भोग करना है, जब तक मैं इतना बड़ा ना हो जाऊं मेरा नाम ना हो जाए तो क्या फायदा, ये जीवन कुछ कर दिखाने के लिए मिला है। तो इस प्रकार की चेतनाओं से भरा हुआ, रजोगुण से भरा हुआ है, रजोगुणी व्यक्तियों से भरा हुआ ये संसार। इसलिए हम देखेंगे तमोगुणी, रजोगुणी और सत्वगुणी तीनों लोगों जो जिस तरह की वैरायटी के लोग हमें मिलते हैं, इन सबके हमेशा उद्देश्य अलग मिलते हैं, और जो एज पर हैं बीच में हैं वो इधर या उधर आ जाते हैं। जैसे जो सत्वगुण में हैं तो वो विशुद्ध सत्व में उठ सकते हैं, मतलब पूर्ण शुद्ध होकर भगवान के धाम जा सकते हैं, लेकिन जो सत्वगुण में है, जो सत्वगुण का भोग कर रहे हैं, सत्वगुण भी एक आसक्ति है, उससे भी एक व्यक्ति बंद हो जाता है लेकिन शुद्ध सत्व से ऊपर जा सकता है, और सत्वगुण रजोगुण से मिश्रित होता है। तो जो रजोगुणी और सत्वगुण के मिश्रित के लोग हैं उनके अंदर भी अभी भौतिक इच्छाएं हैं, काम वासनाएं हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सत्वगुण के मिश्रण के कारण उनके अंदर भक्ति भाव भी होता है, वो लोग भी भगवान की भक्ति करने का प्रयास करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, भगवान के नाम का जप इत्यादि करते हैं। तो ये जो बिल्कुल बीच में लोग हैं, रजोगुण और सत्वगुण के मिश्रण के लोग, इनके आसार होते हैं भक्ति में आगे निकलने के, सतोगुण में आने के, और जो प्रयास भी है इन्हीं लोगों पर किया जाता ज्यादा, अर्थात जो मंदिर से जुड़े हुए हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, मालाओं माला इत्यादि जप इत्यादि कर रहे हैं, दीक्षा इत्यादि ले लें लिया है, ये सब लोग उस एज पे हैं, संघर्षरत जीवन जी रहे हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, बट स्टिल हाँ मुझे मालूम है भक्ति भी करनी है, हाँ मुझे मालूम है कि ये भी करना है, तो सामंजस्य एडजस्टमेंट करते हैं, स्ट्रगल चलता रहता है, लेकिन विजय किसकी होती है? अगर वो ठीक प्रकार से कर रहा है, भक्तों के संग में है, तो वो एक दिन रजोगुण को पूर्णता त्याग करके सतोगुण और विश्व सत्व में जा सकता है। लेकिन जो पूर्णता रजोगुण में है उनके साथ बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। हम लोगों को ऐसे लोग मिलते भी होंगे कि प्रभु जी माला करो, टाइम नहीं है, व्रत रख लो, क्यों, भूख लगती है, मेरे बस की नहीं है, मेरा तो उद्देश्य ये है। अरे तुम क्या जीवन खराब कर लिया तुमने, ये कुछ मतलब है? जीवन मिला है, खाओ पियो ऐश करो, ये क्या तुम लोगों ने अभी से सब कुछ खराब छोड़ दिया? ऐसा थोड़ी होता है। मतलब उनकी इस चेतना में, स्टील फ्रेम माइंड में ये चीज घुसते नहीं है। उनको बोलो जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य किसने देखा भैया, नरक जाना पड़ेगा। अरे किसने देखा नरक, तुमने देखा क्या नरक, सब कुछ यही है, बेकार की बातें सब। उनके दिमाग में नहीं जाएगा ये बात, उनको बहुत ज्यादा संघर्ष की जरूरत है। हां, शुद्ध भक्त के संग में आने से, हरि नाम के संरक्षण में आने से कुछ भी हो सकता है। हम जानते हैं ऐसे ऐसे लोग देखें जो सारे नियमों को तोड़ते थे और एक दिन में बदल गए, धाम की पोटेंसी से, हरि नाम की पोटेंसी से, भक्तों के संग में आने से एक दिन में चारों नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। ऐसे भी लोग हैं। और फिर जो तमोगुण और रजोगुण के बीच में है उनको घसीटना पड़ता है, कुछ काम कर ले, देख उनका बच्चा फर्स्ट आ गया तू क्यों नहीं, उसको रजोगुण से आकर्षित करना पड़ता है, देख उनके पास इतना पैसा, उन्होंने बड़ी गाड़ी ले ली, उसको रजोगुण से आकर्षित किया जा रहा है। क्यों सोता रहता सुबह से लेकर शाम तक, ये को मतलब है, पागल हो गया है ना, छोड़ो ये सब चीजें, उसको रजोगुण से आकर्षित करके रजोगुण में लाने के प्रयास किया जाता है लोगों का। कई लोग आते हैं पूरी जी समझाओ इसको जरा, इतना काम करता ना, धंधा करता ना, बिजनेस करता, कुछ नहीं करता ये, क्यों? वो एज पर है, वो तमोगुण उसके पे। कभी कभार करता है काम धंधा फिर बैठ जाता है, कई बार हम रगड़ते हैं चल बेटा मंदिर चल, आता है बाहर ही खड़ा होता है, बाहर से चला जाता है, तो ऐसी स्थिति रहती है। कभी कभी कोई रिचुअल कर लिया, कोई व्रत रख, जबरदस्ती व्रत रखवाते हैं तब रख पाता है ना, तो इस प्रकार बड़ी खतरनाक स्थिति होती है ऐसी। ये लोग तो रजोगुण से भी ज्यादा मुश्किल है इस तरह के केसेस। और जो तामसिक वृत्ति के पूर्णतः, तो वो तो होपलेस केस, मतलब सोच ही नहीं सकते आपके, कुछ मैं उसको बताऊं सुंदर लीला। इसलिए 10 नाम अपराध में कहा गया, अश्रद्धालुओं को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना एक अपराध है। आप ऐसे व्यक्ति के पास जा रहे हो जिसे कुछ नहीं पता और उसको कृष्ण लीला का बात कर रहे हो, हरिनाम की महिमा बता रहे हो, तो ये उल्टा अपराध हो जाएगा। वो गाली देगा भगवान को, उल्टा सीधा बोलेगा आपको। लेकिन शुद्ध भक्त के संग में आने से ये सारी चीजें, ये जिस क्वालिफिकेशन भी क्वालिफिकेशन बन जाती है। शीला प्रभुपाद अमेरिका में ऐसी जगह गए जहां पर कि तमोगुण में लोग थे, घोर तमोगुण था, बौरी स्ट्रीट में, कई कई दिन नहाते नहीं थे, अंदर से तो अपवित्र थे ही, बाहर से भी अपवित्र रहते थे। यहां बता रहे आचमन के लिए पानी को छुइए, ओम पवित्रो पवित्रो वास मंत्र बताया जा रहा है कि ऐसे अपने को पवित्र करिए, फिर मंत्र का उच्चारण कीजिए। वो कौन से मंत्र का उच्चारण करते थे? कोई मंत्र का नहीं, उनका मंत्र यह था खाओ पियो ऐश करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये उनका मंत्र था। और नाना प्रकार के क्या होता है नशीले पदार्थ लेते थे, महीनों महीनों नहाते नहीं थे, निवस्त्र रहते थे, मन में जो आएगा वो करेंगे, मानसिक धर्म का पालन करते थे। ये बड़ा खतरनाक है कि मेरे मन में जो आया मैं वो करूंगा या करूंगी, मानसिक धर्म का पालन व्यक्ति को उठा पटा के इतनी दूर नरकों में भेजता है पूछो मत। क्योंकि मन, कई बार बोलते हैं लोग बड़े बड़े लीडर्स और ऐसे कई कोर्सेज में सुना है कि मन में आने वाली इच्छाओं को मारो मत, पूरा कर लो। मन की इच्छाएं समुद्र में आने वाली लहरों के समान है, इसमें हर क्षण लहर आती रहेगी, इच्छाएं आती रहेंगी, और कितनी इच्छाओं को पूरा करोगे? कोई फायदा नहीं। तो इस प्रकार जब जीवात्मा, शुद्ध जीवात्मा भगवान से द्वेष करकर भोग की इच्छा से इस भौतिक जगत में आती है, तो यहां पर आकर उसको तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के संग में आना पड़ता है और इसके द्वारा ही वो इस भौतिक जगत में अपना काम धंधा शुरू करता है। लेकिन शुद्ध भक्त के संग में इन तीनों गुणों से व्यक्ति को उठाया जा सकता है। वो लोग नशे इत्यादि लेते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन शुद्ध भक्त के संग में आने से पवित्र हो गए और पवित्र होने के बाद आज हम सबके पास पूरे संसार में हम एग्जाम्पल देख सकते हैं ऐसे लोगों को। तो यहां पर बताया जा रहा है उस नाम की महिमा। ऐसे भगवान जो कि बंधन में है, अपने भगवान की, अपने भक्तों की भक्ति से, उनकी शुद्ध हृदय से, उनके द्वारा ऑफर की जाने वाली स्तुतियों से भगवान बंधे हुए हैं। तो जब भक्त लोग इस प्रकार की चेतना से भगवान का गुणगान करते हैं, ये भगवान से कुछ मांगते हैं तो भगवान पूरा करते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों को भी चाहिए कि हम सब लोग उस परिस्थिति में, जो भी परिस्थितियां हमारे आसपास की हैं, ये सब टेम्परेरी परिस्थितियां, नहीं समझ जाएं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। समय बदल जाता है, समय अपनी गति से चल रहा है और परिवर्तन आएंगे ही आएंगे। परिस्थितियां सदैव एक जैसी नहीं रहेंगी, कभी यहां पर सुख मिलेगा और कभी दुख मिलेगा, लेकिन इन सुख और दुख के प्रभाव से जीवात्मा को प्रभावित नहीं होना चाहिए। लोग समझते हैं, करने का प्रयास भी करते हैं, कहीं धूप कहीं छांव, है ना, कभी गर्मी कभी सर्दी, इसको सह लेते हैं। लेकिन ये एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है कि हम लोगों को इस जीवन में आने वाले शारीरिक और मानसिक दुख और सुख जो भी हैं, इनसे हमें मेन बचना है। नहीं तो व्यक्ति बोलेगा जी गर्मियां भी आई थी, सर्दियां भी आई थी और मैंने तो कोई कंप्लेन की नहीं, तो इसका मतलब क्या मैं संभाव के लेवल में हूं? नहीं, ये तब देखा जाता है जब प्रोवोकिंग सिचुएशन में, विपरीत परिस्थितियों में आपकी चेतना क्या थी। जब हमारे किसी हमारे कोई अपने कोई ऐसे शब्द, कटु शब्द बोल दें, तो वो हमेशा हमारे को दिमाग में चलते रहते और हमारा जीवन उसकी वजह से, उसी का स्मरण कीर्तन करते करते हम लोग और दूषित हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति, भौतिक परिस्थितियों से भक्तों को चाहिए डिस्टर्ब ना हो और सदैव अपने हृदय में भगवान के पवित्र नामों का जप करें, भगवान के रूप को बिठाएं। इस प्रकार क्या होगा कि हम लोग जितना ज्यादा भगवान के रूप को, भगवान के नाम को, भक्त के संग को करेंगे, उससे हमारी चेतना उतनी निर्मल होगी। और जिस प्रकार यह नारायण कवच पढ़ा जा रहा है पूरे शरीर का, पूरे एनवायरमेंट के शुद्ध के लिए, कि हमको भगवान इससे रक्षा करें, भगवान इससे रक्षा करें, इससे रक्षा करें, नो प्रॉब्लम। इतना बड़ा नारायण कवच नहीं पढ़ सकते, लेकिन सिंपल एक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इस महामंत्र का जप कर सकते हैं। ये हमारी चेतना को शुद्ध करेगा, भगवान रक्षा करेंगे, हमारी भक्ति की हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग इस प्रकार का, ये भी कवच है हरे कृष्णा कीर्तन, ये भी कवच है भक्तों के लिए जो कि रक्षा करता है भक्तों की। तो शुद्ध हृदय से प्रयास करें, हम भगवान की भक्ति करें सुधैर, कि हम लोग भगवान की कृपा मिले। धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न या जिज्ञासा है तो पूछ सकते। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।